दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ। एरिक भाई, ओम शांति योगेश भाई, दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप आज हमसे जुड़ पाए। आशा है आप ठीक होंगे। ओम शांति। योगेश भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एरिक भाई, आप जानते हैं कि आप हमारे साथ इस पल स्वर्णिम युग के द्वार पर खड़े हैं और हम आप पर निर्भर करते हैं कि आप हमें स्वर्णिम युग के अंदर का अनुभव करवाएं। यह बहुत सुंदर कार्यक्रम है क्योंकि इसमें हम बहुत तरह के आयामों को, विचारों को सुन रहे हैं जो कि व्यक्तिगत अनुभवों, व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत समझ पर आधारित है। और अभी हम चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत सफर का अनुभव सुने। इतने वर्षों से हम स्वर्णिम युग की, अपने भविष्य की बातें सुन रहे हैं। मैं एक व्यक्तिगत बात से शुरू करना चाहूंगा। अगर मैं आपको कहूँ स्वर्णिम युग, तो आपके मन में क्या आता है? गोल्डन एज या स्वर्णिम युग कहते ही आपके मन में क्या आता है और इसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? योगेश भाई, मैं इस बात को कहकर आरंभ करना चाहूंगा कि जब मैं बचपन में इस ब्राह्मण जीवन से जुड़ा तो उन दिनों में स्वर्णिम युग के बारे में बहुत सारी बातें होती थी, बहुत चर्चाएं होती थी, शाम के समय इस बारे में खास बातचीत होती थी। तो मेरे ब्राह्मण जीवन का प्रथम भाग इसी बात के इर्द गिर्द घूमता था कि कैसे स्वर्णिम युग का अनुभव करना है। और मैं स्वयं भी सोचता था कि ऐसा कोई समय तो होगा जब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, ऐसा समय तो होगा जब इंसानों को ये मालूम हो कि किस प्रकार अच्छी तरह से जिया जाता है। तो मेरे लिए स्वर्णिम युग का अर्थ है जब लोग बिल्कुल सही थे और हमारे परस्पर संबंध बहुत अच्छे थे, प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ संबंध बहुत अच्छा था, अहिंसा थी, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना थी। तो मेरे लिए स्वर्णिम युग का अर्थ सामंजस्य था, जहाँ हर कोई चमक रहा है, हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन अवस्था में है। तो स्वर्णिम युग के साथ यही मेरा पहला परिचय था कि एक उत्कृष्टता के संसार में रहना। एरिक भाई, क्या आपको कभी कोई साक्षात्कार हुआ, कोई गहरा अनुभव हुआ या ऐसी कोई तस्वीर जो आपको बहुत करीब लगी हो? योगेश भाई, यज्ञ में चारों ओर जो तस्वीरें हम देखते हैं, एक संपूर्ण जगत की, प्रकृति की और खूबसूरत लोगों की, इस प्रकार की तस्वीरें मेरे मन में थी। लेकिन स्वर्णिम युग का एक बहुत गहरा अनुभव जो मुझे हुआ था, वो तब था जब मैं पहली बार मधुबन गया था। ये दिसंबर 1982 की बात है। मैं उस समय 15 वर्ष का था। मुझे ध्यान आता है कि उस समय दादी जी और मोहिनी बहन जैसे कि मधुबन का हृदय थे और मेरे मधुबन पहुंचने के 4 दिन के बाद वे मधुबन में पहुंचे। उन दिनों में सभी मधुबन के भाई बहने आंगन में 2 लाइनों में खड़े होते थे और उन दिनों में कार बिल्कुल पांडव भवन के दरवाजे तक पहुंचती थी। तो दादी जी बाहर आए और मोहिनी बहन बाहर आए। दादी जी सभी को लाइन में टोली और दृष्टि दे रही थी। वह इतना सुंदर और रॉयल दृश्य था, ऐसा लगा जैसे कि दूसरी दुनिया में हूँ। और फिर हम सभी मेडिटेशन हॉल में पहुंच गए। वहाँ उनके लिए स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था और जो अनुभव था वह अविश्वसनीय था। पहले एक स्वागत नृत्य था, फिर दादी जी ने बात की और अपना अनुभव शेयर किया। सबको टोली दी गई, फिर जैसे उत्सव आरंभ हो गया, फिर सभी ने नृत्य आरंभ कर दिया और सभी एक दूसरे के साथ उस पवित्र दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने लगे। और मुझे ऐसे लगा जैसे दीवारें भी नृत्य कर रही हैं। सच में ऐसा लग रहा था कि दीवारें भी झूम रही हैं। यह एक बहुत सुंदर आनंदमय अनुभव था। और मुझे ये भी याद है कि कौन सा गीत बजाया जा रहा था। हिंदी बोलने वालों को शायद याद होगा, आओ स्वर्ग बनाए, और वह इतना सुंदर था, ऐसा महसूस हो रहा था कि हम वास्तव में स्वर्ग में हैं, और मैं इन सब लोगों के साथ हूँ जिसे आम तौर पर हम अजनबी कहेंगे, क्योंकि वे लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता,
क्योंकि मधुबन की वह मेरी प्रथम यात्रा थी,
लेकिन एक बेहद के परिवार की भावना थी, बहुत रॉयल्टी, सुंदरता, मनोहरता और दिव्यता का अनुभव हो रहा था जिसने बहुत गहराई तक मुझे छू लिया, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कभी हम इसी प्रकार रहा करते थे, फिर से हम इसी प्रकार रहने वाले हैं। इस प्रकार की एक याददाश्त बार बार मुझे प्रेरणा दे रही थी, आज तक भी वो प्रेरणा दे रही है वह करने के लिए जो हम कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम हम सब यही चाहते हैं, ऐसे संसार की रचना करना जहाँ इस प्रकार के अनुभव प्रतिदिन हो। एरिक भाई, हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत के दिनों में बाबा हमें इन बातों का अनुभव करवाते थे, और यज्ञ के शुरुआत में तो बहुत साक्षात्कार भी होते थे, लेकिन फिर एक सेवाओं की लहर चल पड़ी। अभी आपको सुनते हुए कि पहले हमें ये सब अनुभव होते थे, लेकिन अभी 30 साल 40 साल बीत गए, लेकिन फिर लगता है कि क्या ये स्वर्णिम युग आ रहा है। तो इतने वर्षों के बाद जो 15 साल की उम्र में जो आपने अनुभव किया था, वो आज आप किस प्रकार जोड़कर देखते हैं? क्या वो संसार आ रहा है या एक सपनों की दुनिया है या कल्पना है? क्या उस संसार की अभिव्यक्ति होगी? क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं? तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
Really moving closer towards that world? Is it going to manifest? Was it a bit of fantasy or dream world that, you know, we wonder how it's going to make it happen now?
Yogesh bhai, जब हम अपने आसपास का संसार देखते हैं तो पाते हैं कि यह संसार अब टुकड़े टुकड़े हो रहा है, लेकिन निस्संदेह दो बातें एक साथ हो रही हैं। पुराना वृक्ष गिरावट की ओर है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट देखने में आता है, पर्यावरण, राजनीति और अर्थव्यवस्था के रूप में, लेकिन हम जानते हैं एक नया वृक्ष भी उग रहा है, और हम जड़ें अपने आप को अभी तैयार करने में लगी हैं। तो मेरी समझ है कि संगम युग का इतना समय चला गया है, जिसे कहा जाता है कि हाथी गुजर गया है, सिर्फ पूंछ बाकी है, और यज्ञ में कितनी महान आत्माओं ने अपना बहुत सुंदर पाठ बजाया है, और वे सब अपने दूसरे जन्म में हैं। तो अधिकतर कार्य किया जा चुका है, बस अब हमें अपने पाठ को पूरा करना है और प्रत्येक को संदेश भी देना है। एक हिसाब से लगता है सभी घटनाएं ड्रामा प्लान अनुसार ही हो रही हैं, और परमात्मा की योजना के अनुसार ही सब हो रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ, मेरे बहुत से बीच के दोस्तों से ये बात सुनने को मिलती है कि कहीं न कहीं हम सभी मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे मन की अवस्था में, और हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार इस जीवन को खुशी खुशी जीना है। तो जो दृश्य मेरे सामने आता है कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ जिसमें हमें स्वर्णिम युग को लाना है, तो जब मैं इसको करता हूँ तो मुझे खुश रहना चाहिए। मैंने पुराने ब्राह्मणों में बहुत परिपक्वता देखी है, तो मुझे लगता है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसा होगा जो हमें और तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। हम अगले स्तर पर पहुंचेंगे जहां वह द्वार खुला होगा जो पहले भी खुला था, और स्वर्णिम युग वास्तविक बन जाएगा। एरिक भाई, आप एक सुख के संसार की रचना करने की बात कर रहे हैं, तो आपके अनुसार कौन से ऐसे मुख्य सिद्धांत हैं जो आपके वर्तमान ब्राह्मण जीवन को आपके स्वर्णिम युग के जीवन से जोड़ते हैं? तो ऐसे मुख्य सिद्धांत जो एक पुल का काम करते हैं आपकी वर्तमान अवस्था में और भविष्य की अवस्था में, तो मुख्य वो बातें कौन सी हैं? योगेश भाई, आप जानते हैं कि आधा कल्प हमारा धर्म अहिंसा होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमारे विचारों, भावनाओं और वृत्ति में इस विशेष गुण को विकसित करना आवश्यक है, जिससे हर प्रकार के विचार और भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अहिंसा, आदर और सराहना के पुल का निर्माण करना चाहिए, जो हमारे संबंधों को और नई दिशा देगा, फिर वे हमें नए युग की ओर ले जाएंगे। निसंदेह जब बाबा स्वराज की बात करते हैं, जब हम यहाँ स्वराज्य अधिकारी होंगे तो भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनेंगे, और हमें चेक करना चाहिए कि हमारे मन पर हमारा कितना अधिकार है और मेरे व्यवहार में रॉयल्टी और हल्कापन कितना है। मुझे लगता है कि हमें सभी के साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए और सभी के लिए शुभ भावना रखनी चाहिए, चाहे वे भीखे हैं, चाहे वे लोग हैं जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, चाहे कोई इंसान किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। प्रेम युग की आत्मा होने के नाते यह मेरी धारणा है, कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और कल्याणकारी वृत्ति रखूं। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें एक पुल का काम करेंगी एक नई सृष्टि की रचना के लिए। एरिक भाई, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जब हम स्वर्णिम युग के बारे में लोगों को समझाएं, खासकर उनको बताएं जो नॉन ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण नहीं है, तो उनको ये ज्ञान सुनाने की कितनी संभावना है। हमने स्वर्णिम युग का प्रदर्शन बहुत काल्पनिक तरीके से किया है, सारे तस्वीरें जिसमें कि विमान और ताज दर्शाए गए हैं, तो हम बहुत सालों से उन तस्वीरों को देख रहे हैं, और अभी आप कह रहे थे इस पुराने संसार के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे बताएं कि ऐसा संसार आ रहा है, तो किस प्रकार इस परिवर्तन का अनुवाद उनको समझाएं। योगेश भाई, हाँ, जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो सच में बिल्कुल एक काल्पनिक, एक सपनों की दुनिया लगती है, लेकिन उसको कहने से पहले हमें उसका स्वरूप बनना होगा। भविष्य के उन मूल्यों को हमें अभी अपने जीवन में पूर्णतया धारण करना होगा, उन्हें जीना होगा। बहुत बार बाबा यह वाक्य बोलते हैं जो मुझे बहुत पसंद है कि फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। तो इसका अर्थ है दूसरों को मेरे व्यवहार में, मेरे चेहरे में, मेरी दृष्टि में कुछ अलग नजर आए, केवल मूल्य नहीं बल्कि कुछ दिव्य। तो इससे उन लोगों में आशा पैदा होगी कि ऐसे भ्रष्टाचारी संसार में भी बिना क्रोध के, हिंसा के और डर के जिया जा सकता है। मुझे लगता है कि जब लोग हमें ये सब देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ में नहीं, सिर्फ दादियों में नहीं, जब ये सब वो हम में से बहुतों में देखते हैं, तो उनके मन में ये सवाल उठना चाहिए, इन सब के पीछे कौन है, कौन है वह जो ये संभव कर रहा है। तो फिर वो उस निर्माता की ओर मुड़ेंगे जो कि उस उत्पाद के पीछे है, वो बाबा की ओर मुड़ेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि उनके मन में ये स्वीकार्यता आएगी, अच्छा, भगवान इनके पीछे है, भगवान कार्य कर रहा था और ये लोग भी कार्य कर रहे थे, तो कुछ अलग होने जा रहा है और वे लोग हमसे भी जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि हमारे व्यवहार में, हमारी धारणा में वह प्रमाण दिखना चाहिए। इससे पहले कि वे हमारे शब्दों पर यकीन करें, हमें हमारे जीवन की प्रैक्टिकल धारणा से दिखाना होगा। एरिक भाई, आपको अभी भी लगता है कि हमें उन्हें विवरण देने की आवश्यकता है? यह ऐसा ही है जैसे कोई स्वर्ण पदक जीतना चाहता हो तो उसे रोज इस दृश्य को अपने सामने इमर्ज करना होगा कि वे उस स्वर्ण पदक को जीत रहे हैं और किस प्रकार की भावना पैदा हो रही है, तो ताकि वे उसे पाने के लिए मेहनत करें। और हम दृष्टि से सृष्टि की बात कर रहे हैं, तो अब सवाल आता है कि देखना कितना महत्वपूर्ण है, स्वरूप बनने के लिए दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, मूल्यों की बात है, बाबा प्रतिदिन मूल्यों में करते हैं, लेकिन नई दुनिया में जाने के लिए आपको लगता है कि हम किसी हिस्से को मिस कर रहे हैं या कुछ समझ नहीं रहे हैं? सिर्फ उन दृश्य को उत्पन्न नहीं करना, लेकिन उन सिद्धांतों को देखना, उन विशेषताओं को देखना, स्वर्णिम युग की महानता को देखना, तो क्या हम इन बातों को थोड़ा मिस कर रहे हैं क्योंकि हम सेवाओं में अत्यधिक व्यस्त हैं? और हमें इन सबको एक नई दृष्टि से देखना होगा कि वास्तव में नई दुनिया आ रही है, और अगर हम इसे देख पाए तो शायद जल्दी ऐसा बन पाएंगे, क्या ऐसा नहीं है? योगेश भाई, हाँ जी, मैं ऐसा सोचता हूँ और मेरी स्वयं की भावना है कि यह पहचान का सवाल है और इस बात का एहसास कि मैं कौन हूँ, जैसे किसी भी और बात में होता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो भी वस्तुएं आपके आसपास हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आप असलियत में कौन हैं, और यही बात हमारे पर भी लागू होती है। मेरे लिए यह कोई सवाल नहीं है कि स्वर्णिम युग में जाना है या स्वर्णिम युग की रचना करनी है। मेरे लिए है कि मैं हूँ ही वहाँ का, मैं आत्मा वही तो थी। 2500 साल तक मैंने सतयुग और त्रेता युग में बिताए हैं, वही मेरा मूल देश है, वही मेरी धरोहर है और वही मेरा घर है। और आधा कल्प भ्रांति जाल में फंसकर मैं स्वयं को भूल गया और अब मैं स्वयं को याद कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इसी प्रकार आरंभ होता है कि स्वयं को जानना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, इस अनंत में स्वयं का दर्शन करना है। और दूसरा वाक्य जो मुरली में आता है, हम सो हम, जिसका अर्थ है कि मैं कुछ बन नहीं रहा हूँ, मैं वही बन रहा हूँ जो मैं पहले था। हाँ, ये बात सही है कि सेवाओं में और प्रशासन के कार्य में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इसी बात की पहचान करनी है कि मैं स्वाभाविक रूप से और मौलिक रूप से कौन हूँ, और अपने सत्य और दिव्य स्वरूप को प्रकट करना है। तो मुझे लगता है कि यह बात मेरे अपने असली स्वर्णिम युग के स्वरूप को बाहर लाने में मदद करती है। तो यह महसूस था कि मैं सर्वश्रेष्ठ, उच्च, बहुत दिव्य देव आत्मा हूँ, और इस बात को मैं सदा स्मृति में रखूं, तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी जो मुझे अपने गुणों को प्रकट करने में मदद करेंगी। एरिक भाई, क्या आपके पास कोई विशेष तरीका है या युक्ति है जिससे इन बातों को आप अपने अंदर जागरूक रख सकें? योगेश भाई, हाँ, जैसे अमृत वेला बार बार में इन सब बातों के बारे में सोचना और उन बातों को अनुभव करना कि स्वर्णिम युग का जीवन कैसा होता है। उदाहरण के लिए, मेरे शरीर के साथ मेरा संबंध कैसा होगा, मृत्यु और जीवन के साथ संबंध कैसा होगा, भोजन के साथ, कपड़ों के साथ, दूसरों के साथ, जानवरों के साथ और प्रकृति के साथ। तो अमृत वेला इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि दूसरे ब्राह्मणों के साथ भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। आप सभी को मुबारक हो इस कार्यक्रम के लिए। तो जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, सुनते हैं, तो ये सारी बातें अंदर ताजा हो जाती हैं। और तीसरी बात जो मदद कर सकती है, वह है देवताई स्वरूप में स्वर्णिम युग पर सामूहिक योग और दूसरों को देवताई स्वरूप में देखना। और चौथी बात जो मैं सोच रहा था, बाबा का जो विचार है, आवाज और तस्वीरों की ताकत, जैसे यज्ञ के आरंभ में बाबा ने सभी दादियों को राजकुमार और राजकुमारी के परिधान में फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए कहा और कहा कि तुम इस तस्वीर को सदा अपने साथ रखो और इसको देखते रहो और याद करो कि आप यही हो। तो उन तस्वीरों को खोजना जो विशेष रूप से आपके हृदय को छू लेती हैं, और व्यावहारिक तौर पर उन्हें स्वयं को याद दिलाने के लिए प्रयोग करना, क्योंकि वे तस्वीरें आपके अंदर कुछ विशेष प्रकार की भावनाओं को प्रकट करते हैं, और गीत संगीत भी जिसका आपके लिए कोई विशेष अर्थ है। तो मैं इन सब बातों को प्रयोग करता हूँ यह स्मृति रखने के लिए कि मैं कौन हूँ। और निसंदेह मधुबन की विशेष यादें, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो मेरे जहन में इन सब बातों को ताजा रखने के लिए ये कुछ व्यावहारिक बातें हैं जिनका मैं प्रयोग करता हूँ। एरिक भाई, और एक दूसरी बात जो हमें मदद करती है उन स्मृतियों को ताजा रखने के लिए, वो है आप जैसे महान योगियों के साथ मेडिटेशन करना। तो आप हमें उस स्वर्णिम युग की यात्रा करवाएं, अपने विचारों को मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से बताएं और साथ मिलकर उन भावनाओं को जागृत करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, तो चलिए साथ मिलकर उन सभी अनुभवों को इकट्ठा महसूस करते हैं, स्वर्णिम युग के अनुभव।
Experience together for a few minutes this beautiful moment, all these experiences you've been relating so far about the golden age.
Yogesh bhai, zarur. मैं आरंभ करूंगा परमधाम से. मैं परमधाम में हूँ. Being in the soul world. परमधाम से. मैं एक संपूर्ण जगत में प्रवेश करता हूँ. मैं स्वर्णिम युग में प्रवेश करता हूँ और मैं अपना पहला परिधान अपना शरीर धारण करता हूं, इस बारे में सोचिए कि जब आप संसार में प्रकट होते हैं तो पहली वस्तु जो मेरे सामने है, पहली बार जब मैंने इन आंखों से देखा, और कल्पना करें पहली बार अपने माता पिता को देखना, पहली बार आप भौतिक आंखों से देख रहे हो, हम अपने माता पिता का चेहरा देख रहे हैं और वे भी हमें बहुत दिव्य प्रेम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। कोई स्वत्वात्मकता नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई मेरेपन की भावना नहीं है, बस एक दिव्य भावना है स्वागत की। जब आप इन आंखों के द्वारा बाहर देख रहे हैं तो अपने आसपास के संसार को देख रहे हैं, ऐसा संसार जहाँ रंग है, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, प्रत्येक वस्तु एक संपूर्ण सामंजस्य में है, जीवन के इस संपूर्ण सांचे में कोई अंतर नहीं है। आत्मा, शरीर, दूसरे लोग, पांच तत्व, प्रकृति, जानवर, ये सब मिलकर एक संपूर्ण सांचा तैयार कर रहे हैं। जब आप बड़े होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप बहुत सहजता से चले जाते हैं। प्रकृति आपकी सेवा करते हुए बहुत प्रसन्न हो रही है। जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की सुंदरता के प्रति परस्पर सराहना की भावना उत्पन्न होती है। हर एक पल एक पवित्र आनंद की अभिव्यक्ति है। आनंद शब्द भी वहां नहीं होता। समस्त विश्व आपसे आदर, करुणा और प्रेम की दिव्य ऊर्जा से आपस में जुड़ा हुआ है और इस संसार में हम सभी एक हैं, जैसे एक ही हाथ की अलग अलग उंगलियां। जीवन अनंत है, आनंद बेहद है, हर शब्द जो हम बोल रहे हैं, जो भी शब्द हम उच्चारण करते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे उनकी सोने में नक्काशी की गई है, और मेरे शब्द प्रेम और करुणा से भरपूर हैं। यही हमारा संसार है, यही हमारा राज्य है, यही वह स्थान है जहाँ से हम आए हैं, और यही वह स्थान है जहाँ हम वापस लौट रहे हैं। ओम शांति। एरिक भाई, ओम शांति योगेश भाई। यह बहुत सुंदर शक्तिशाली स्मृति की आवाज थी जो आपके अंदर स्पष्ट रूप से गुंजायमान है। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने समस्त ब्राह्मण परिवार के साथ ये बातें शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ उपस्थित होने के लिए योगेश भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।